आयु एक सुनसान रोड पर बेतहाशा दौड़ रही थी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसकी पीठ पर चाकू घोंप दिया। आयु दर्द से चिल्लाकर नीचे गिर गई और वो खून से लथपथ थी। अचानक आरफ चिल्लाकर नींद से उठा। उसने सिर पकड़कर कहा, ये कैसा सपना था? आयु, तुम ठीक? बोलते हुए आरफ ने अपने बेड के साइड में देखा तो आयु वहां नहीं थी। तभी आरफ को याद आया कि कल रात गुस्से में आयु को एक अनजान जगह पर छोड़कर आ गया था। उस वक्त आरफ आयु से इतना गुस्सा था कि वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। अपने रूम में आते ही आरफ ने नींद की माइल्ड टैबलेट ली और सोने चले गया। आयु, वो ठीक तो होगी ना? ये मैंने क्या कर दिया? आरफ ने परेशान स्वर में कहा। उसने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। आरफ उसी वक्त गाड़ी लेकर आयु को ढूंढने निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ आयु इधर उधर रास्ता ढूंढते हुए काफी दूर आ चुकी थी। काफी दूर चलने के बाद आयु को 3-4 आदमी झुंड में दिखाई दिए। उन्हें देखकर आयु ने राहत की सांस ली। वैसे भी इतनी दूर चलने के बाद वो काफी थक चुकी थी। आयु ने धीरे से कहा, इनमें से किसी न किसी के पास मोबाइल जरूर होगा। अयान को कॉल करके बुला लूंगी। थैंक यू भगवान जी, ऐसा लग रहा था अगर एक कदम भी और चलती तो यहीं फेंट होकर गिर जाती। आयु धीमे कदमों से चलकर उन आदमियों के पास गई। वहां जाकर उसने पीछे से कहा, एक्सक्यूज मी भाई साहब, क्या मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है? आयु की आवाज सुनकर उन चारों ने पीछे मुड़कर देखा। तभी आयु ने महसूस किया कि उन सबके हाथ में शराब की बोतल थी। आयु को देखते ही उन चारों ने आंखों ही आंखों में बातें की और फिर उसकी तरफ अजीब नजरों से घूर कर देखने लगे। उनमें से एक आदमी बोला, मोबाइल भी है और बाकी कुछ और भी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, खासकर इस रात और ठंड के वक्त में। बोलते हुए वो आयु के करीब आने लगा। आयु उसके इरादे अच्छे से समझ रही थी। वो काफी थकी हुई थी, लेकिन उसमें भी उसने उस आदमी को पैर से किक मारकर दूर कर दिया। आयु की ट्रेनिंग हुई थी, वो भी काफी अच्छे तरीके से, ऐसे में उनसे निपटना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन 4 आदमियों के साथ में उस थकी हालत में वो कभी फाइट नहीं कर पाती। आयु ने वार्निंग देने के लहजे में कहा, मेरे पास मत आना वरना तुम चारों की वो हालत करूंगी कि सोच भी नहीं पाओगे। क्या सच में? फिलहाल तो हम चारों तुम्हारी वो हालत करेंगे कि तुमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा, वहां खड़े दूसरे आदमी ने कहा और फिर वो दौड़कर आयु के पीछे जाने लगे। मौका देखकर आयु भागने लगी। वो चारों भी पूरी तेजी से उसके पीछे आ रहे थे। आयु ने दौड़ते हुए अपने मन में सोचा, मुझे लगा था मुझे हेल्प मिल जाएगी, लेकिन यहां तो मैं एक नई ही मुसीबत में फंस गई हूं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है आरफ। अपने गुस्से में तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम इतनी रात को मुझे कहां छोड़कर जा रहे हो। सोचते हुए आयु की आंखें नम होने लगी। इस वक्त उसका रोने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकती थी। वहां ठीक से रोशनी नहीं थी, ऊपर से आयु की आंखों में आंसू होने की वजह से वो ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। दौड़ते हुए आयु लड़खड़ा कर गिर गई और उतने में ही उन चारों को आयु के पास आने का मौका मिल गया। आयु को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वो जोर जोर से हंसने लगे, जबकि आयु उठने की कोशिश कर रही थी। प्लीज कुछ मत करना, तुम्हें पैसे चाहिए या कुछ और चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मेरी यहाँ से निकलने में हेल्प कर दो, आयु ने अपनी तरफ से आखिरी कोशिश करते हुए कहा। वो उनसे काफी पोलाइटली बात कर रही थी। उनमें से एक आदमी आयु के पास आया और उसे उठाते हुए कहा, इस वक्त तो हमें पैसे या कुछ और से ज्यादा चाहिए और वो हो तुम। फिर वो करीब से आयु के चेहरे को देखने लगा और उसने धीमी आवाज में कहा, काफी खूबसूरत है यार ये तो, अंधेरे में दिखाई ही नहीं थी। सोचा था अपना काम निकालने के बाद मार के फेंक देंगे, लेकिन इसे अपने साथ भी रख सकते हैं। उसकी बात सुनकर आयु के शरीर में डर के मारे कंपकंपी उठने लगी। हॉस्पिटल में उसने ऐसे काफी केसेस देखे थे जहां रेप के बाद लड़कियों को वहां लाया जाता था और उनकी हालत काफी दयनीय होती थी। आयु ने अपना पूरा जोर लगाया और उसे आदमी को खुद से दूर धकेल दिया। वो दौड़कर जाने लगी, तभी उसको पकड़ने के लिए उस आदमी ने आयु का हाथ पकड़ा। इन सब में आयु के ड्रेस की स्लीव्स फटकर उसके हाथ में आ चुकी थी। उसने आयु को पकड़ा और जबरदस्ती अपने सीने के लगा लिया। आयु मदद के लिए जोर से चिल्लाई, प्लीज समबडी हेल्प मी। आयु को इस तरह कसम साते देखकर वो आदमी हंसते हुए बोला, यहाँ मदद के लिए किसी को बुलाना बेकार है, हमारे जैसे ही 2 आदमी और उठकर आएंगे और तुम झेल नहीं पाओगी। आयु ने अपने पैर से उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर किक किया, जिससे वो लड़खड़ा कर दूर गिर गया। उसके ऐसा करने पर वो गुस्से में जोर से चिल्लाया, पकड़ इसे, ये ऐसे नहीं मानने वाली। उसके चिल्लाते ही 2 आदमी आयु के पास आए और उसे पकड़ लिया। वो आदमी जिसको आयु ने मारा था, वो आयु के पास आया और उसके बालों को पीछे से खींचते हुए उसके गाल पर जोरदार तमाचा लगाया। बहुत हो गया तेरा, पीयूष निकाल रे इसके कपड़े, वो आदमी जोर से चिल्लाकर बोला। उसकी बात सुनकर आयु डर गई। आयु के करीब आने के लिए उन्होंने आयु को छोड़ा तो वो बिना सोचे समझे सामने की तरफ भागने लगी। आयु अच्छे से जानती थी इस वक्त उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं आएगा, फिर भी वो इस तरह हिम्मत भी नहीं हार सकती थी। दौड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी एक कार सामने से आई। एक पल के लिए लगा वो गाड़ी आयु को उड़ा देगी। उसकी फ्रंट लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। गाड़ी आयु के बिल्कुल पास आते ही रुक गई। आयु डरकर चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ गई। आयु जोर जोर से रो रही थी और वो चारों आदमी उसके पीछे आ गए थे। तभी गाड़ी में से आरव निकला। उन चारों आदमियों और आयु की हालत देखकर आरव को समझते देर नहीं लगी कि वहां क्या हो रहा होगा। उसने आयु को उठाया। आयु ने आरव को अपने सामने देखा तो डर के उसके गले लग गई। उन चारों में से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अजीब लड़की है, गाड़ी वाले को देखकर उससे चिपक रही है, हम भी तो वही करने वाले हैं जो ये करेगा। उसकी बात सुनकर आरव ने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा। आयु का चेहरा दूसरी तरफ था। आरव ने अपना हाथ पीछे कर रखा था और उसके हाथ में रिवॉल्वर थी जो उसने सिक्योरिटी के लिए पहले ही अपने साथ ले रखी थी। आरव ने गन आगे की और उनमें से दो आदमियों के पैरों पर एक एक करके गोली चलाई। उनमें से दो आदमी भागने लगे तो आरव ने उनमें से एक के पैर के तो दूसरे के कंधे पर गोली चलाई। वो चारों घायल होकर वहां पड़े चिल्ला रहे थे। कौन है बेतु? जमीन पर गिरे हुए ही एक आदमी ने कराहते हुए पूछा। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल पर कबीर को कनेक्ट किया। उसने कहा, मुझे मिल गई है वो। मैंने तुम्हें जो लोकेशन बताई थी उसके लेफ्ट में 4 किलोमीटर आगे बढ़ो, अपने साथ में बाकियों को भी ले आना, कहकर आरव ने कॉल कट कर दिया। आरव ने जब वो सपना देखा था तभी से वो आयु को ढूंढने के लिए निकल गया था। आरव ये जानता था कि अकेले वो आयु को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसने लास्ट आयु को जिस जगह पर छोड़ा था वहां से चारों दिशाओं में उसने अपने आदमियों को आयु को ढूंढने के लिए भेज दिया था और खुद भी आयु को देखते हुए उस तरफ आया था। लकीली कुछ भी गलत होने से पहले आयु उसे मिल गई थी। आरव ने महसूस किया आयु को बहुत तेज फीवर था और वो बेहोश होकर उसके कंधे पर गिरी थी। वो चारों आदमी अभी भी हैरानी से आरव की तरफ देख रहे थे। आरव ने उन्हें देखकर सर्द आवाज में कहा, गलत इंसान पर हाथ डाला है तुमने। हिम्मत कैसे हुई मेरी मिसेस खुराना को चोट पहुंचाने की?
हमें क्या पता था कि ये तुम्हारी पत्नी है? अरे इस तरह कौन रात को अकेले अपनी बीवी को सड़क पर छोड़ता है? उनमें से एक आदमी ने दर्द से चिल्लाकर कहा। उसकी बात सुनकर आरव को रियलाइज हुआ कि गलती सारी उसी की थी। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में कबीर और उसकी बाकी आदमी आ चुके थे। कबीर के आते ही आरव ने कहा, इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाओ, बहुत शौक है इन्हें लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने का, इन्हें भी तो पता चले कि जब जबरदस्ती होती है तो कैसा लगता है। कबीर ने उसकी बात पर हामी भरी और अपने आदमियों के साथ उन चारों को भेज दिया। फिर उसने आयु की तरफ देखा जो आरव की बाहों में बेहोश थी। आयु के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे से काफी कमजोर लग रही थी। उसके हाथ पर नाखून की खरोच के निशान भी थे। आयु की हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि उसके ये आखिरी घंटे बहुत मुश्किल से बीते होंगे और उसने खुद को बचाने के लिए काफी स्ट्रगल किया है। कबीर ने आयु की तरफ देखकर पूछा, लेकिन ये यहाँ अकेली क्या कर रही है? दादी ने मुझे इन्हें ढूंढने के लिए कहा था पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि अगर ये मिसिंग होती तो दादी से पहले आप मुझे ये काम करने को कहते। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर कुछ पल रुक कर कहा, आगे से कभी गलती से भी दादी की बात मत टालना। ये मुसीबत में है तो इसकी वजह मैं हूँ और कारण तुम अच्छे से जानते हो। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए था। इनके साथ आज कुछ भी हो सकता था। किस्मत हर बार अच्छी नहीं रहती है सर, कबीर ने आरव को समझाते हुए कहा। आज उसे पहली बार आयु पर दया आ रही थी। आरव ने उसकी बात को टालते हुए कहा, गाड़ी ड्राइव करो कबीर। कबीर ने उसकी बात पर हामी भरी और ड्राइविंग सीट पर आ गया। आरव बैक सीट पर आयु के साथ बैठा हुआ था और उसने बीच में पार्टीशन लगा रखा था। इस वक्त आयु की जो हालत थी, आरव नहीं चाहता था कि वो कबीर देखे। फिर आरव ने गाड़ी की लाइट ऑन की तो उसकी नज़र आयु के हाथ पैर और चेहरे पर गई जहां कुछ चोटों के निशान थे। आज तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद तुम मुझे माफ़ कर पाओ या ना कर पाओ, पर मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इतना कैसे गुस्सा कर सकता हूं मैं तुम पर कि तुम्हें अकेले इस हालत में यहां छोड़कर चला गया। तुम्हें कितना सफ़र किया होगा। तुमने गलती की तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं भी गलती करूं, पर क्यों कर रहा हूं मैं? तुम्हें तकलीफ़ देकर मुझे डबल तकलीफ़ होती है, फिर भी मैं क्यों तुम्हें दर्द दे रहा हूं? बोलते हुए आरव की आंखों से आंसू का कतरा आयु के चेहरे पर पड़ा जो इस वक्त उसकी गोद में सोई हुई थी। आयु बेहोशी की हालत में भी काफ़ी डरी हुई थी कि उसने आरव का हाथ कसके पकड़ रखा था और वो बीच बीच में नींद में हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। ये सब देखने के बाद आरव को और भी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था।